हाँ, तो जो प्रसंग चल रहा था कि वस्तुतः जब आकांक्षा जो है चेतन निष्ठ धर्म है, तो चेतन साकां व्यक्ति साकांक्ष होगा, पदार्थ साकांक्ष नहीं होगा, पद साकांक्ष नहीं होगा, तो कैसे आपने कहा कि साकांक्ष पद पदों का समूह वाक्य कहलाता है या पदार्थ साकांक्ष होता है? उसके लिए कहा कि अर्थाह तावत, अर्थ जो है साकांक्ष कहलाते हैं, क्यों? क्योंकि स्वपद स्रोतरी अन्योन्य विषय आकांक्षा जनकत्व नाम, ताकि पदार्थ, इसलिए पदार्थ को इसलिए हमने साकांक्ष माना या साकांक्ष बोला, क्योंकि पदार्थ का जो पदार्थ जनक जो पद होता है अथवा पदार्थ बोधक जो पद होता है वही है स्वपद। स्व से ले लें पदार्थ बोधक को, तो स्वपद मतलब पदार्थ बोधक पद, यानी पद अर्थ को बताने वाला जो पद, तो उसका जो स्रोतरी, उसका जो श्रोता है, उस पद को सुनने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति में अन्योन्य विषय आकांक्षा जनकत्व न, उस श्रोता में अन्य अन्य विषय के प्रति आकांक्षा का जनक होता है कौन? पदार्थ। अब जैसे मान लीजिए कि ग्रामम गच्छति, इसमें आपने केवल ग्रामम को सुना, तो यहाँ पर पदार्थ बोधक पद कौन हो गया? ग्रामम। इस ग्रामम पद को सुना, आपने सुना, तो आप हो गए श्रोता, आपके मन में अन्योन्य विषय की आकांक्षा होगी। अन्योन्य विषय की आकांक्षा कैसे होगी? माने एक दूसरे विषय की अर्थ की आकांक्षा होगी। जैसे ग्रामम सुनेंगे तो आकांक्षा होगी कि ग्रामम कह गच्छति अथवा ग्रामम किमर्थम गच्छति, इस तरह की जो आकांक्षा होगी इस श्रोता में आकांक्षा होगी, उस आकांक्षा का जनक कौन होता है, उस आकांक्षा का उत्पादक कौन होता है, तो वह अर्थ ही होता है, वह पदार्थ ही आकांक्षा का जनक होता है। इसीलिए साकांक्षा पदार्थ इत्युच्यन्ते, चूंकि पदार्थ जो है वह आकांक्षा का जनक होता है, आकांक्षा का उत्पादक होता है, और उत्पादक हो आकांक्षा उत्पादक होने के कारण ही जो है पदार्थ को साकांक्ष बोला जाता है। तद्वारे न, और पदार्थ के माध्यम से, पदार्थ के द्वारा जो है तत्प्रतिपादकानि प्रधानी अपि साकांक्षानि इत्युच्यन्ते, और पदार्थ के द्वारा जो है पदार्थ का प्रतिपादक कौन होता है, पदार्थ का बोधक कौन होता है? पद होता है, तो पद भी जो है इसीलिए साकांक्ष कहलाता है। इस मतलब ये है कि डायरेक्ट जो है साक्षात जो है साकांक्ष जो होगा वह तो श्रोता होगा, लेकिन परंपरा माने इनडायरेक्ट रूप से, चूंकि श्रोता में आकांक्षा का उत्पादक कौन होता है, तो पदार्थ होता है, तो आकांक्षा का उत्पादक होने के कारण पदार्थ को भी साकांक्ष कहते हैं। और पदार्थ के द्वारा पद भी जो है वह आकांक्षा का उत्पादक होता है, इसीलिए पद भी जो है वह साकांक्ष कहलाता है। इस तरह से इन्होंने समाधान दिया। और लास्ट में कहा इति उपचर्यन्ते, यहाँ जो उपचर्यन्ते कहा गया ना, इस उपचर्यन्ते का अर्थ होगा कि ऐच्छिक निमित्त के कारण ये कहे जाते हैं। ऐच्छिक निमित्त क्या हुआ? एक तो निमित्त हुआ कि प्रसिद्ध निमित्त, माने प्रसिद्ध कारण, कि जिसको कि सब लोग जानते हैं कि हाँ जी ये कारण है। लेकिन एक कारण होता है कि जो हम अपनी इच्छा से उसको कारण मान बैठते हैं, तो ऐसा जिसको हम अपनी इच्छा से कारण मान बैठते हैं ना, उसी को कहा जाता है ऐच्छिक निमित्त मानना, और उसी को उपचर्यन्ते कहते हैं। दूसरी भाषा में अगर कहना चाहें तो लक्षणा कह लीजिए, कि लक्षणा के द्वारा ऐसे माने ऐसी स्थिति में इस तरह का प्रयोग होता है। कैसे? कि वस्तुतः जो है वह तो साकांक्ष श्रोता होता है, लेकिन चूंकि आकांक्षा का उत्पादक पदार्थ है, और पदार्थ के द्वारा मतलब पद भी जो है आकांक्षा का उत्पादक है, इस तरह से पद और पदार्थ भी जो है साकांक्ष कहलाएंगे। इस तरह से लक्षणा के द्वारा जो है पद और पदार्थ साकांक्ष कहलाते हैं, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन लक्षणा को चलिए नहीं कह करके, ये कहिए कि ऐच्छिक जो है, ऐच्छिक रूप में पद और पदार्थ को साकांक्ष कहा गया है। ऐच्छिक रूप में मतलब अपने मन से इसको मान लिया गया है, वस्तुतः जो है ऐसी बात नहीं है, वस्तुतः जो है वह तो श्रोता जो है वही साकांक्ष होता है, इसलिए कहा इति उपचर्यन्ते। फिर आगे कहते हैं यदवा, यदवा से अथवा कह करके दूसरी बात दूसरा पक्ष भी बता रहे हैं कि पदानि एव अर्थान प्रतिपाद्य, माने पद जो होते हैं वही पद अर्थान प्रतिपाद्य माने अर्थों को प्रतिपादित करते हुए अर्थांतर विषयक आकांक्षा जनकानी, अन्य अर्थ के विषय में आकांक्षा का जनक होते हैं पद, आकांक्षा को का उत्पादक होते हैं पद। इति उपचारात, इति उपचार माने ऐच्छिक निमित्तत्वात, माने ऐच्छिक निमित्त होने के कारण पदानी साकांक्षानी पद जो हैं वो साकांक्ष कहलाते हैं। एवं अर्थाः साकांक्षाः परस्पर अन्वय योग्याः, इस तरह से अर्थ मतलब पदार्थ, पदार्थ जो हैं वही साकांक्ष होते हैं और वही पदार्थ जो हैं परस्पर अन्वय योग्य भी होते हैं। तद्वारे न और उस पदार्थ के द्वारा पदानि अपि परस्पर अन्वय योग्यानि, उसी के उस पदार्थ के द्वारा ही जो है पद भी जो है परस्पर अन्वय के योग्य होते हैं, इसीलिए पद को भी साकांक्ष कहा जाता है, पद को भी योग्यतावान कहा जाता है। इसी तरह से सन्निहितत्व भी पद में चला जाएगा, कैसे कहते हैं कि सन्निहितत्वंतु पदानाम एके नैव पुंसा अविलंबेन उच्चरितत्वम्। सन्निहितत्व क्या है अगर पूछे परीक्षा में कि सन्निधि क्या है तो यही जवाब देना, क्योंकि सन्निधि और सन्निहितत्व दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो वही कहते हैं कि सन्निहितत्व क्या है कि पदानाम एके नैव पुंसा माने एक ही पुरुष के द्वारा एक ही व्यक्ति के द्वारा जो पदानाम अविलंबेन उच्चरितत्वम है, एक ही व्यक्ति के द्वारा जो बिना विलम्ब किए पदों का उच्चारण किया जाना है वही उसी को हम सन्निहितत्व कहते हैं। तच्च साक्षादेव पदेषु संभवति, और ये जो सन्निहितत्व है ये तो साक्षात पद में ही रहता है, क्योंकि उच्चारण किसका होगा पद का ही होगा, उच्चारण तो पदार्थ का होगा नहीं, तो इस तरह से सन्निहितत्व जो है यह तो साक्षात पद में रहता है, लेकिन आकांक्षा और योग्यता जो रहती है पद में वो पदार्थ के द्वारा रहती है, तो द्वारा ही क्यों न सही रहती तो है, इसीलिए पद को भी और पदार्थ को भी जो है साकांक्ष या योग्यता सहित जो है माना जाता है। इस तरह से तेनो अयम अर्था संपन्ना, अब यहाँ जो इन्होंने विवेचन किया इस विवेचन से ये फलित हुआ, ये निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला कि अर्थ प्रतिपादन द्वारा, अर्थ के प्रतिपादन के द्वारा, प्रतिपादन माने बोधन, अर्थ बोधन के द्वारा श्रोतु श्रोता में पदांतर विषयाम माने अन्य पद के विषय में अर्थांतर विषयाम वा अन्य अर्थ के विषय में आकांक्षाम जनयताम आकांक्षा को उत्पन्न करने वाले प्रतीयमान परस्पर अन्वय योग्य अर्थ प्रतिपादकानाम, प्रतीयमान माने ज्ञायमान प्रतीत होने वाला ज्ञात होने वाला जो परस्पर अन्वय के योग्य अर्थ का प्रतिपादक जो है, परस्पर अन्वय योग्य अर्थ का बोधक जो है कौन, सन्निहितानाम पदानाम जो सन्निहित पद है वह उन पदों का समूह जो है वह वाक्य कहलाता है। ये जो वाक्य का लक्षण इन्होंने शुरू में कहा था कि आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूहो वाक्यम, उसका ये परिष्कार है, उसका जो है ना ये फाइनल रूप है, पूरा स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया गया है। तो अगर वाक्य का लक्षण पूछा जाए तो अधिक से अधिक नंबर पाने के लिए ये तो लिखना ही है वाक्यम तु आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह, और उसके बाद ये लिखना है कि परिष्कृतम लक्षणम, और परिष्कृतम लक्षणम लिख करके यहाँ जो वाक्य है ये वाक्य लिखना है कि अर्थ प्रतिपादन के द्वारा श्रोता का पदांतर विषयक अथवा अर्थांतर विषयक आकांक्षा को उत्पन्न करते हुए प्रतीयमान जो परस्पर अन्वय योग्य अर्थ है उस अर्थ का प्रतिपादन करते हुए सन्निहित जो पदों का समूह है वह समूह ही वाक्य कहलाता है। इस तरह से वाक्य का क्या लक्षण होगा, इस पर इन्होंने विचार प्रस्तुत किया। अब वाक्य के लक्षण में जो आया है कि पदानाम समूहो वाक्यम, कि पदों का जो समूह है वह वाक्य कहलाता है। अब ये विचार कर रहे हैं कि पद किसको कहते हैं, पद कौन कहलाएगा, तो उसके लिए लक्षण बताया। पदम च वर्ण समूह, वर्ण समूह पदम, वर्णों का जो समूह है वह पद कहलाता है। यहाँ मैं थोड़ा आपको सावधान कर दूं, ये हम लोग न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, व्याकरण दर्शन नहीं पढ़ रहे हैं। व्याकरण दर्शन में जो है ना पद किसको कहते हैं, तो सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत जो है वह पद कहलाते हैं। और एक दूसरा भी सूत्र है पद संज्ञा करने का, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, इससे भी जो है ना पद संज्ञा होती है। तो और एक और भी है नह किए, तो ये तीन सूत्र हैं पाणिनि व्याकरण में जिससे कि पद संज्ञा की जाती है, और जिसकी पद संज्ञा होगी वही पद कहलाएगा। ये तो व्याकरण दर्शन की बात होगी, लेकिन न्याय दर्शन में जो है ना कहा गया ऐसा नहीं मान करके ये कहा गया कि वर्ण समूह पदम, वर्णों का जो समूह है वह पद कहलाता है। और समूह किसको कहते हैं, तो कहते हैं समूहश्च अत्र एक ज्ञान विषयी भाव, यहाँ अत्र अत्र माने वर्ण समूह, इसमें जो समूह शब्द का प्रयोग किया गया है उस समूह का क्या अर्थ होगा, तो एक ज्ञान विषयी भाव, एक ज्ञान का विषय होना जो है वही है समूह। समूह मतलब ऐसे तो होता है समुदाय, इकट्ठा एकत्रित जो रहते हैं बहुत सारे उसको समूह कहा जाता है। यहाँ पर समूह का मतलब ऐसा नहीं कह करके क्या है कि एक ज्ञान का अगर विषय अनेकों विषय हो तो उसको जो है ना यहाँ पर समूह कहा जाएगा। अब जैसे कहते हैं रामायण, तो रामायण में रेफ, आकार, मकार, आकार, यकार, अकार, णकार, अकार, ये जो आठ वर्णों का जो है ना, आठ वर्ण जो है यहाँ पर एक ज्ञान के विषय हैं। एक ज्ञान कौन है, यहाँ पर रामायण। इस तरह से रामायण का जो एक ज्ञान है, इस ज्ञान के ये आठों वर्ण जो हैं वो विषय हैं, और विषयी भाव जो है इन वर्णों में है, इसीलिए यहाँ पर वर्ण समूह जो है रामायण इसको पद माना जाएगा। मैं याद दिलाऊं आपको, मैंने कहा था कि ज्ञान जो होता है ना वो हमेशा स्विषयक होता है, कभी निर्विषयक ज्ञान नहीं होता। अर्थात ज्ञान जो होगा ना वो किसी न किसी का ही तो ज्ञान होगा, किसी वस्तु का ज्ञान होगा, किसी पदार्थ का ज्ञान होगा, तो जिसका ज्ञान होगा वही ज्ञान का विषय कहलाता है। तो यहाँ पर अगर रामायणम कहते हैं तो रामायणम कहने में रामायण पद का ज्ञान होता है, और किसका ज्ञान हुआ, रामायण पद का ज्ञान हुआ ना, और रामायण पद में जो है ना आठ वर्ण है, तो इन आठों वर्ण जो है यही इस ज्ञान के विषय कहलाएंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि जिसका ज्ञान होता है वह ज्ञान का विषय कहलाता है। तो यहाँ पर आठों वर्णों का ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञान के विषय हुए। कितने ज्ञान के विषय हुए, एक ही ज्ञान के विषय हुए। ज्ञान जो है यहाँ पर केवल हुआ है रामायणम का ज्ञान हुआ है, यह जो रामायणम का एक ज्ञान है, इस एक ज्ञान के ये आठों वर्णों का जो है समूह यह विषय है। तो एक ज्ञान का विषय होना जो है वही यहाँ पर समूह शब्द से लिया जाएगा। समूह शब्द से ये नहीं लिया जाएगा कि सारे के सारे एक जगह स्थित हों, एक जगह जो है बैठे हों, एक जगह खा रहे हों, सो रहे हों, इस तरह का समूह जो है नहीं लिया जाएगा। कहा कि कमाल है, आपने जो समूह की अभी व्याख्या की ये तो बिल्कुल हट करके व्याख्या की। समूह का मतलब तो ये होता है जैसे पशुओं गायों का समूह, तो क्या होगा, सारी गायें एक जगह बैठी रहेंगी। मनुष्य का समूह, तो क्या होगा, सारे मनुष्य जो है एक जगह बैठी रहेंगी, ये बैठा रहेगा। नेताओं का समूह, विद्यार्थियों का समूह, सारे विद्यार्थी एक जगह रहेंगे, इस तरह से आपने नहीं करके व्याख्या, ये ऐसी व्याख्या क्यों की कि एक ज्ञान का विषय होना जो है वह समूह होता है, ऐसा आपने क्यों कहा। तो इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। बहुत बड़ा रहस्य क्या है कि यहाँ पर किसके समूह की चर्चा हो रही है, वर्णों के समूह की चर्चा हो रही है, और अगर हम जो प्रचलित है समूह का अर्थ, वो अर्थ यहाँ पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जैसी सारी गायें एक जगह बैठी रहती हैं, गायों का समूह बन जाता है, उस तरह से सारे वर्ण एक जगह नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वर्ण जो हैं वो उच्चरित प्रतिध्वंसी कहलाते हैं। कहोगे कि गुरु जी ये तो बड़ा जबरदस्त शब्द आपने सुनाया, नया शब्द सुनाया, उच्चरित प्रतिध्वंसी, ये क्या होता है? तो इसका मतलब है कि उच्चारण होते ही जो है उसका प्रतिध्वंस हो जाता है, उसका ध्वंस हो जाता है, माने उसका नाश हो जाता है। आप बताइए कि आप जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, तो जो अक्षर आपने सुना, सुनते ही उसके बाद वो ख़त्म हुआ ना, दोबारा उसको सुनते हैं क्या? हाँ, मोबाइल में रिकॉर्डिंग को दोबारा आप सुन सकते हैं, तिबारा सुन सकते हैं, लेकिन आपसे जब हमारी बातचीत हो रही होगी, आपको जब मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँगा, उस समय में जो आप एक बार सुनेंगे सुनेंगे, उसके बाद वो शब्द ख़त्म हो गया ना, उसको दोबारा नहीं सुनेंगे सुन पाएंगे, तिबारा नहीं सुन पाएंगे। तो क्यों क्यों नहीं सुन पाएंगे? तो उसका वो नाश हो जाता है। तो जिसका उच्चारण होते ही नाश हो जाए उसको कहते हैं उच्चरित प्रतिध्वंसी। इसको थोड़ा और सूक्ष्मता से समझिए कि न्याय दर्शन में जो है ना, वर्णों को उच्चरित प्रतिध्वंसी जो माना गया है, वो तृतीय क्षण में माना गया है कि उसका ध्वंस होता है। माने प्रथम क्षण में वर्ण का उच्चारण होता है, द्वितीय क्षण में क्या होता है कि जिस वर्ण का उच्चारण किया गया है ना, उसकी स्थिति रहती है, माने वह वर्ण रहता है और अपने समान वर्ण को जो है ना वो उत्पन्न कर देता है। ये द्वितीय क्षण में होता है। और तृतीय क्षण में जो है ना उसका नाश हो जाता है। किसका? पहले वह जिस वर्ण का उच्चारण हुआ है ना, उसका नाश हो जाता है और अन्य वर्ण की वहाँ पर उत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसा कर लेते हैं, उत्पत्ति, स्थिति और नाश। प्रथम क्षण में जो है ना उत्पत्ति होती है वर्ण की, ठीक। द्वितीय क्षण में उस उत्पन्न वर्ण की स्थिति रहती है, और तृतीय वर्ण में जो है ना, वह जो उत्पन्न वर्ण है और स्थित वर्ण है, उसका नाश हो जाता है। तो ये जो तृतीय क्षण में वर्ण का नाश होना जो है, इसी को न्याय दर्शन वाले कहते हैं उच्चरित प्रतिध्वंसी। हमने शायद द्वितीय क्षण में उत्पत्ति और स्थिति दोनों को पहले बताया था, वो नहीं, ऐसा ही समझिए। उत्पत्ति, स्थिति और नाश। उत्पत्ति का प्रथम क्षण होता है, स्थिति का द्वितीय क्षण होता है, और नाश का तृतीय क्षण होता है। नाश वाला जो तृतीय क्षण होता है ना, उसमें क्या होता है कि वह उच्चारित वर्ण स्वयं नष्ट हो जाता है और उसी समय में अन्य वर्ण की जो है उत्पत्ति हो जाती है तृतीय क्षण में। तो वह अन्य वर्ण का मामला छोड़िए, अभी केवल एक वर्ण को पकड़ करके लें। जिस एक प्रथम क्षण में उस वर्ण का उच्चारण हुआ, द्वितीय क्षण में उस वर्ण की स्थिति रही। स्थिति इसलिए मानना जरूरी है, अगर स्थिति नहीं मानेंगे तो फिर सुनाई कैसे देगा? वो स्थित होगा वर्ण तभी तो सुनाई देगा, इसीलिए एक क्षण उसकी स्थिति के लिए रखते हैं, और अगले क्षण में जो है ना सुनने के बाद उसका जो है तृतीय क्षण में नाश हो जाता है। यही है उच्चरित प्रतिध्वंसी। तो हमारी रिकॉर्डिंग का टाइम हुआ जा रहा है, इसलिए आगे के पाठ में आगे का पढ़ते हैं।